نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہم نے تکبر کے موضوع پہ نویں پارے میں سے پوائنٹس نوٹ کیے, قسمیں بھی نوٹ کی ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ تکبر کی تقریباً 9 مختلف قسمیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی زبان زد عام ہوتی ہیں ہمارے کلچر میں کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے. تو تکبر کے ساتھ جو ہمارا ایک تصور بندھا ہوا ہے, بہت ہی اچھے کپڑے پہن کے, اکڑی ہوئی گردن, یا کوئی بہت مطلب کہہ لیجئے کہ اس کے سٹائل میں ایک پرائڈ ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن مجھے تو اس ٹاپک کے پڑھنے اور پڑھانے کے بعد جو چیز سمجھ آئی ہے نا, وہ کیا ہے کہ باہر کی چیزیں, یعنی اچھے کپڑے, یہ تو باہر کی چیز ہے نا, اچھا جوتا, یہ تو باہر کی چیز ہے. آپ کسی کو 1000 روپے کا جوتا پہنا دیں یا آپ اس کو 10000 کا پہنا دیں, وہ تو جوتا ہے نا, پہنا کس نے ہے. کپڑا آپ کسی کو 500 کا پہنا دیں, کسی کو 5000 کا پہنا دیں, کپڑا باہر کی چیز ہے. تکبر کا تعلق باہر کی چیز سے نہیں ہے, اندر کے انسان سے. کئی دفعہ انسان 500 والی چیز میں بھی اکڑا ہوتا ہے اور کبھی 5000 میں بھی نہیں اکڑا. تو یاد رکھیے کہ پہلی بات, چند جملے بولتی جاؤں گی, آپ نوٹ کرتے جائیں گے, کوئی بھی یہ نہ اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو چھپ کے آتی ہے اور انسان کے اندر ایسے گھس جاتی ہے. کیونکہ جب تک آپ کو مجھے اس چیز کا یقین نہیں ہوگا کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے, میں اور آپ اس کا علاج بھی نہیں کریں گے. تو اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ ہاں, مجھ میں تکبر کا امکان موجود ہے. کھلے ذہن کے ساتھ جب اس موضوع کو سنتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے آپ کو پہچاننے کی نوبت آتی ہے. دوسری بات ہے کہ کسی دوسرے کے طرف نہیں سوچنا چاہیے, فلاں بڑی تکبر والی ہے, میری نن بڑی متکبر ہے, میری بہن ایسی ہے, وہ بڑی گھمنڈی ہے, یہ ہے وہ ہے. کیونکہ جب ہم دوسروں پہ توجہ دیتے ہیں نا تو ہمیں اپنے نقص نہیں دکھتے. ہمارے ہاں ایک معروف کلچر میں بات کیا ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی پھر کبر کیا ہے؟ دل کی کیفیت, آپ کہہ لیجئے کہ ہارٹ ڈیزیز ہے. دل کے امراض میں سے ایک مرض کبر ہے, اور اس کی سمپٹمز یعنی اس کی علامتیں انسانی رویوں میں ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مثلا آپ دیکھیے کہ تکبر میں انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, اور یہ اتنی زبردست اور خطرناک بیماری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اتنی خوفناک وعید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے قرآن سنت میں. جہاں تک آپ دیکھیے کہ غل اور کینہ جس کو ہم نے پیچھے دیکھا ہے, تو اللہ کہتے ہیں میں اس سے دلوں کو پاک کر دوں گا. لیکن تکبر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ متکبروں کے دلوں کو پاک کر دوں گا, بلکہ کہا اگر رائی, اور رائی پتہ کیا ہوتی ہے, اچار میں ڈالتے ہیں, رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ زمین اور آسمان میں سب سے پہلی جو اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی نا, اس کا سبب تکبر تھا. سورۃ بقرہ 34 میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ٹھیک ہے, تو کیا پتہ چلا کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ شیطان, ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں اذا ذیل, ہے اللہ کی نظروں سے گر گیا صرف تکبر کی وجہ سے, اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. ہم جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو پھر ہم متکبر ہوتے ہیں. سورۃ مومن آیت 60 نوٹ کریں, بعد میں جا کر آپ آیت اس کی لکھیے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے پکارو, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. کیا پتہ چلا عبادت سے تکبر کیا ہے؟ میں کیوں پڑھوں نماز, میں کیوں جھکوں, میں سجدہ نیچے کروں, میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے, اور میری تو کریز خراب ہو جائے گی, میرے گلاسز خراب ہو جائیں گے, اب میں سب کے سامنے جا کر زمین پر سر رکھ دوں. اس طرح کی جو کیفیات ہے نا, یہ انسان کو بہت بڑا کرتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا اس تکبر کی وجہ سے جو ناحق کرتے تھے. آیت 20 ہے سورۃ احقاف کی. چلیے دوسروں کو چھوڑیں, اپنے اوپر لیں, کیا میرے اندر تکبر ہے؟ سورۃ زمر آیت 72 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ اس میں رہو گے, اور تکبر کرنے والوں کا کتنا بڑا ٹھکانہ ہے. ये तो थी चंद आयतें कुरान की, हदीसें, लेकिन हम अमली बातें करेंगे क्योंकि हम ये मौजू समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इसमें से अब आपने मैंने अपने अमल के लिए बात लेनी है। तो याद रखिए कि तकब्बुर की शनाख्त और दर्जात क्या हैं, यानी इसकी डायग्नोज कैसे की जाए। हम सब जानते हैं कि कोई भी मुहलक बीमारी एकदम पैदा नहीं होती, बल्कि ख़तरनाक बीमारियाँ छोटी छोटी चीज़ों से ज़ाहिर होती हैं और फिर बाद में एक बहुत बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार करती हैं। तकब्बुर चूँकि बड़ी खौफनाक बीमारी है, तो हमें देखना यह है कि ये बीमारी किन मराहल से गुज़र कर बड़ी होती है, इसका आगाज़ कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। अगर हम शुरू में इसका इलाज कर लेंगे तो बाद में इंशाल्लाह इलाज करना मुमकिन होगा, बिल्कुल कैंसर की तरह। हमने पीछे देखा, दोहरा लीजिए, तीन स्टेप्स हैं तकब्बुर तक पहुँचने के। सबसे पहले उजुब आता है, पहली सीढ़ी उजुब, खुद पसंदी, यहाँ से तकब्बुर की इब्तदा होती है। खुद शौरी बिगड़ कर खुद पसंदी बन जाती है, अपने आप को ही पसंद करना, खुदा परस्ती की बजाय खुद परस्ती करने लग जाना, हत्ता के बंदा अपने आप को ही खुदा बना लेता है। अल्लाह के आगे सजदे तो करता है लेकिन बातें नफ्स की मानता है। ये पहली सतह, याद रखिए कि इस सतह पे ये इतना ख़तरनाक नहीं होता। बंदे को जब उधर रोक लिया जाए तो वो रुक सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तीन चीज़ें हलाक करने वाली हैं, उनमें से एक चीज़ उजुब है, ख़तरनाक बीमारी है। चले, मुझे तो फ़िक्र होनी चाहिए ना कि मेरे अंदर उजुब है कि नहीं। तो आइए ज़रा पहचान देखते हैं, उजुब की क्या पहचान है। अगर आप देखें ना, तो उजुब की पहचान सबसे बड़ी क्या है कि बंदे की सारी गुफ्तगू अपने बारे में होती है। मेरा ज़ौक, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं तो ये पहनती हूँ, मेरा ये स्टैंडर्ड है, मैं कैसी लग रही हूँ, फलां मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो दूसरों से भी जो बातें कर रहे होते हैं ना, उस वक्त वो ये सोच रहे होते हैं कि लोग मेरी बातें करें, और ये सोचना कि मैं तो सबके हवासों पर छाई हुई हूँ। समझ लीजिए, अगर आपके दिल के अंदर ये बुराई आ गई है ना कि आपको अपने ऊपर बड़ा नाज है, तो आपके अंदर उजुब है, और आपकी गुफ्तगू से ये पता चलेगा। जैसे आप देखिए, किसी बर्तन में अगर गुंजाइश से ज़्यादा पानी डाल दें तो छलकने लगता है ना, इसी तरह खुद पसंदी का एहसास इतना ज़्यादा होता है, संभाला ही नहीं जाता, कब तक अंदर सिमटेगा। अब ये बंदा सोचों से बढ़कर लफ्ज़ों में आता है, तो फिर सेकंड फेज़ शुरू हो जाता है उजुब के बाद फ़ख्र का, सेकंड स्टेज के फ़ख्र। फ़ख्र क्या है, पहले तो थी ना सोच, अपने ख्यालों में आप इतने बड़े हैं, और आप देखिए वो लोग किसी से सीधे मुँह बात ही नहीं करते, मासियों से बात नहीं करेंगे, महफिल में बहुत बातें नहीं करेंगे, अलग अलग रहेंगे, ज़रा सी अकड़ होती है, चलेंगे भी तो ख़ास अदा से, यानी उनकी अदाएँ होती हैं। जब ज़ुबान पे आएगा फ़ख्र तो तारीफ़ों के पुल बांधेंगे। सूरह लुकमान 18 में अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह को फ़ख्र करने वाले खुद पसंद लोग पसंद नहीं हैं। इधर अगर इलाज कर लें तो क्या है कि लफ्ज़ पकड़ें, अपना इलाज कर लीजिए इंशाल्लाह। अगर इधर ना किया तो फिर तीसरा मरहला है तकब्बुर का, और वो क्या है, पहले सूरत में आपको अपनी ज़ात अच्छी लग रही थी, फिर दूसरे में आप अपनी तारीफ़ें शुरू कर गए, अब तकब्बुर आ गया तो कह लीजिए कि लोग किसी को कुछ समझते ही नहीं, दूसरों की बुराई करना। अब जब लिखिए, क्या मैं दूसरों की बुराइयां तो नहीं करती, बेइज्जती तो नहीं करती लोगों की, मजाक तो नहीं उड़ाती, अगर कोई उनकी बात से इत्तफाक ना करे या इख्तलाफ करे तो दुश्मनी पे आने लगते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इस तरह की बातें तकब्बुर का इजहार है। शैतान ने सबसे पहले तकब्बुर किया। इंसानों में सबसे बड़ा मुतकब्बिर शख्स फिरौन था। हज़रत मूसा ने जब उनको रब की तरफ पुकारा तो हठधर्मी पे आ गया, मजाक उड़ाया, कहने लगा आप तो मुझे पागल लगते हैं, दीवाने हैं, जादूगर हैं, यानी लुक डाउन जिसको कहते हैं ना। मूसा अलैहिस्सलाम को हकीर जानता था फिरौन, क्योंकि अपने अंदर जो बड़ाई थी, और कहने लगा ना रब को मुलाला। अच्छा, अलामत क्या है, फ़ख्र और तकब्बुर की पहचान क्या है, तो आप देखिएगे कि इमाम गज़ाली का नाम आप सबने सुना होगा, उन्होंने इस मौजू पे बहुत कुछ कहा। कहते हैं कि इसके असबाब और किस्में भी हैं, आपको बुक का नाम दे देती हूँ, आप ख़ुद भी वहाँ से नोट कर सकते हैं, कीमियाए सआदत, यानी केमिस्ट्री ऑफ गुड फॉर्चून कह लीजिए। तो वो बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं, नोट करिए। कहते हैं कि सबसे पहले अपनी ज़ात और उससे मुंसलिक चीज़ों पर खुशी का इजहार करेगा वो बंदा, और सबसे पहली बात इल्म, बंदे को अपने इल्म पे फ़ख्र होने लगता है, अपने इल्म का इजहार कसरत से करेगा, डिग्रियों को अपने दीवारों पे लगाएगा, अपने नाम के साथ कुछ सब के लाख के डॉक्टर फलां, देखिए क्या डॉक्टर, वो तो है ही डॉक्टर, कोई बुरी बात नहीं है, आपने अपनी डिग्री अपने क्लिनिक में लगानी है, ये वो बात नहीं है, लेकिन ये वो शख्स है कि जो अपनी छुपी हुई चीज़ें दूसरों के सामने लाता है, जैसे फटता है, अपनी नुमाइश करता है, और इसको ये नहीं अच्छा लगता कि लोग इसको कोई अहमियत ना दें, किसी भी जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी की तारीफ, डिग्री की बातें, उस्तादों की तारीफें, और सबके उस्ताद घटिया, मेरा उस्ताद बड़ा अच्छा है, मेरी यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, हमारे रूल बहुत सारे हैं। तो इमाम गज़ाली कहते हैं कि पहला सबब क्या है कि इल्म, जब किसी में थोड़ा सा भी इल्म आता है ना, तो अपने आप को दूसरों के मुकाबले में इतना बड़ा समझता है कि जैसे उसको दूसरे वहशी और जानवर लगते हैं, और कहते हैं कि ये बंदा तवक्को क्या करता है, सब मेरी गैर मामूली ताज़ीम करें, अगर कोई इसकी इज्जत ना करे इसको बड़ी हैरत होती है, अकल पे हैरत होते, कहते हैं अच्छा मेरे जैसा आलिम फाजिल बंदा इनके बीच में मौजूद है तो ये मुझे अहमियत ही नहीं दे रहे, कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे। फिर अगर कोई इनको दावत में बुलाए, क्या ये हमारे घर, तो ये कहते हैं आपकी दावत मैं कबूल करूं, बड़ा आपके ऊपर एहसान होगा। किसी जगह गए डॉक्टर के पास, लाइन में लगे, हो सकता है इनको 20 नंबर की पर्ची दे दी, तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, अच्छा जी अब मैं सबके साथ बैठ के इंतज़ार करूं, मैं तो इतना अहम बंदा, मैं तो इतना मसरूफ़ हूँ, मेरा तो ये हाल होना चाहिए कि मैं आऊँ तो सब कहें जी नहीं 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 हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे, हती कि डॉक्टर से भी ये चाहता है कि ये हमें दूसरों से ज़्यादा तवज्जो दें, मुझे सर आंखों पर बिठाएं और ये वो, कहते हैं अगर इसको कोई अपने घर खाने पर बुला ले तो इस तरह एहसान जतलाते हुए उसकी दावत कबूल करता है जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा उस पर एहसान किया है। वो कहते हैं ना कि वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। फिर ऐसा बंदा जो होता है ना, दिल से चाहता है कि लोग कहें कि आपके वजूद में तो बरकत ही बड़ी है, आप हमारे घर आए तो बरकतें शुरू हो गई, आप दुआ करते हैं तो ये होता है। अच्छा मसला पता कहाँ बिगड़ता है, जब लोग तारीफ़ें करके ऐसे लोगों का दिमाग आसमान पर चढ़ा देते हैं, पता नहीं आपके दिल में उजब था कितना था, तकब्बुर ना बनता अगर लोग बहुत तारीफ़ें ना करें। आप कहते हैं कि इस्लाम ने इसलिए मुंह पे तारीफ़ें करनी पसंद नहीं की, मना किया है, नेगेटिव असर होता है। एक अरब शायर है मुतबन्ना, वो कहता है कि अगर तुम करीम बंदे की यानी बड़े डिसेंट बंदे की इज्जत करोगे ना तो तुम्हारा एहसानमंद होगा, और अगर कम ज़र्फ़ इंसान की इज्जत करोगे ना तो बागी हो जाएगा। तो याद रखिए बहुत तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि छोटे दर्जे के बंदे को बड़ी जॉब मिल जाए या बड़े कपड़े, नौ दौलती है का लफ्ज़ सुना होगा, चार लफ्ज़ पढ़ लिए तो इल्म आ गया, चार पैसे कमा लिए तो दौलत ही, फड़े मारने वाला अंदाज़ हो जाता है। तो मुतकब्बिर भी यही करता है, उसको लगता है कि जैसे मैं दुनिया में कामयाब हूँ ना आखिरत में भी देखना। अच्छा दूसरों को क्या कहेगा, मुझे वैसे आपकी बड़ी फ़िक्र है, मतलब अंदाज़ क्या होता है, मैंने तो जन्नत में ही जाना है लेकिन आप अपनी फ़िक्र कर लें, यानी उसको हर बात में ये लग रहा होता है कि मैंने जन्नत में जाना है, दूसरों से हमदर्दी करेगा, मुझे आपकी बड़ी फिक्र है आपकी, आप दोजख में ना चले जाएं, यानी मीन के मैं सिक्योर हूँ, अच्छा मुझसे दुआ करा लें। अच्छा ऐसा बंदा जी होता है ना, कोई दुख दे ना सताए, कहते हैं देखना अब इस पे मुश्किल पड़ेगी, मुझको सताया, मेरे जैसे बंदे का इसने दिल तोड़ा, देखना अब क्या होगा, अल्लाह ने इसको पकड़ना है। गोया के लोगों को साबित कराते हैं कि हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं। तो आपने मैंने अपना मुहासबा करना है, क्योंकि हम भी इल्म की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, कभी बड़े ना बने, आप जितने छोटे रहेंगे ना अल्लाह आपको उतना बड़ा कर देगा, अपने आप को कभी वलीउल्लाह ना समझे, मेरी ज़ुबान ही काली है, मुझे तो पहले ही ख्वाब आ जाता है, मुझे तो इशारे बड़े होते हैं, ये सब टोन इस बात की है कि आप अपने आप को बड़ा बनाते हैं। फिर इसके बाद हमने जो डिफरेंट किस्में की हैं, नौ किस्म की, ख़ानदान पे तकब्बुर, ये भी अच्छा नहीं, हम नवाबों की नस्ल हैं, मेरे दादा तो जी वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते थे, जहाँ ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती अपने ख़ानदान की बातें, किससे छेड़ना, खाते थे पीते थे, रस्मों रिवाज, उनकी शान शौकत, और बाज़ दफ़ा देखिए पल्ले नहीं धेला और करती मेला मेला, गरीब लोग भी इस तरह के शिकार होते हैं। जैसे एक औरत के बारे में किसी ने कहा कि कहने लगी मेरे शोहर कोई आम खानसामा नहीं है, वो अंग्रेज़ों के खानसामा थे, यानी वो इस पर भी बड़ा फ़ख्र करते हैं। तो याद रखिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, आपने मैंने असल में अपनी फ़िक्र करनी है, और जिसको ख़ानदान का तकब्बुर होगा ना कभी ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करेगा, हम नहीं देते, हम नहीं लेते, हम नहीं किसी को अपने से बड़ा समझते, हम किसी को अपने बराबर का समझते ही नहीं है। तो इस तरह करते करते वो तो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो ख़ानदान का तकब्बुर क्या है, अल्लाह ने आपको मुझे किसी भी घर में पैदा कर दिया, इसमें मेरा क्या है, कुछ भी तो नहीं है, इसको निकालना। और फिर ये वो तकब्बुर होता है कि जो बंदे को बाज़ दफ़ा दूसरों से काट देता है। इसका इलाज क्या है? हदीस है अल्लाह के नबी की, जिसके अमल ने उसको पीछे डाला उसका हसब नसब उसको फ़ायदा नहीं देगा। तो आप इस हदीस पे गौर करें, क़यामत के दिन कोई मेरे काम नहीं आएगा। अल्लाह के नबी तक देखिए अपने ख़ानदान के उन लोगों को फ़ायदा नहीं देंगे जो कुफर पे थे, तो क्या करें? सूरह हुजरात की आयत 13 को सोचे, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम। तो क्या बात समझ आ रही है? जो सारी बात का ख़ुलासा करूँ कि तकब्बुर से बचिए हर लिहाज से, अपने ख़ानदान के लिए सोचना छोड़ दें। सब तो आदम से पैदा हुए, अपनी असल को देखिए, हकीर पानी की बूंद से पैदा हुए हैं। मेरे में खूबी क्या तकब्बुर वाली, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। फिर इसी तरह ससुराल से औरतें बहुत मुवाजना करती हैं अपने मैके का। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाइए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना आपके अंदर आजजी नरमी आएगी, आप इंसान दोस्त होंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ये अमीर है कि गरीब। नहीं नहीं इसके हाथ नहीं धुले हुए, पता नहीं सलाम करूँगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे शान बेने आ जाए, ठीक ओके ओके बैठ जाए बैठ जाए। सलाम भी करेंगे तो आधे मुंह के साथ करेंगे, लोगों के अंदर बैठेंगे तो ऐसे लगेगा हमें एक नुमायाँ जगह चाहिए। तो इन सब को निकालिए, क्यों? इसलिए कि ये जन्नत में जाने के रास्ते में रुकावट हो जाएगी। फिर आप देखिए कि शक्ल सूरत का हुसन का, यानी वो सारी चीज़ें जो पीछे पारे में हम कर चुके हैं, आज तो सिर्फ आपको एक खुलासा देना मकसद था कि अपने ऊपर गौर कीजिए। जितना ज़्यादा वीकेंड पे भी गौर करेंगे आपको लगेगा, और जब ख़ास पे शक्लो सूरत का तो उसमें तो तारीफ़ ही तारीफ है। बैठेंगे तो अदा से आप शीशे में देखते रहेंगे, आजकल शीशा छोड़िए आपका फ़ोन ही बड़ा, सेल्फीज़ लेते रहना, अपने आप को पोज बनाना, अपनी अंगूठियों को घुमाना, कभी अपने कपड़ों को देखना, मैं बात करते हुए कैसी हूँ, मैं खाना खाते हुए कैसी लगती हूँ। और जैसे वो वैनिटी केस, औरतों के हाथों में ही होता है ना, और वैनिटी किसको कहते हैं? अपने ऊपर फ़ख्र करना, अपने आप को बड़ा बनाना, इससे बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को देख के साफ लग रहा होता है कि ये ख़ुद को खूबसूरत देख रहे हैं, आईने से बहुत प्यार होता है। पोज बदलेंगे, देखें कपड़े सिलकर आए तो पहन पहन कर देखेंगे मैं कैसी लगती हूँ। वुज़ू करते हुए भी सामने शीशे में शक्ल पर नज़र पड़ जाती है तो वो वुज़ू भूल के अपनी शक्ल को देखने लग जाते हैं। मशीनी तौर पर इबादत करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। आप देखिए पहले की माएँ जो थी अपनी बेटियों को शीशा नहीं देखने देती थी, क्योंकि उनको पता था कि शीशे में देखेंगी बच्चियां तो इनके दिलों में जज्बात आएंगे। अनमैरिड बच्चियों को खूबसूरत कपड़े नहीं पहनाते थे, रेड कलर नहीं पहनती थी कुंवारी बच्चियाँ, गोटे किनारे वाले कपड़े नहीं पहनती थी, सीधी सादी मांग खींच दी जाती थी। तो अपने आप को इसमें रखें। और ऐसे लोगों को अपनी पिक्चर ब्यूटी का बड़ा शौक़ होता है, तस्वीरें खींचना, अपने आप को संवारना, पोज बनाना, फ़ोटो सेशंस। आजकल शादियां देख लीजिए, दुल्हन क्या लग रही होती है, डमी नहीं लगती, चलती फिरती एक हीरोइन बन के इधर उधर फिरती फिराती है। तो इससे भी अपने आप को बचाना है। जानवर तो बड़े खूबसूरत होते हैं, उनको मान नहीं है ना, इसलिए प्यारे लगते हैं। याद रखिए जो बंदा ख़ुद को खूबसूरत बनना समझने लग जाए ना, उसको लोग पसंद नहीं करते। और ऐसे लोग तो कहीं जाकर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद निकाल के शीशे में अपने आप को देखेंगे, मैं ठीक लग रही, दूसरों की आंखों, मैंने एक दफ़ा एक जगह गई तो कह ठहरो 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 क्या कह रही, तुम्हारी आंखों में अपनी शक्ल देख रही हूँ। यानी ये एक ऑब्सेशन होता है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए।